तो देवताओं के दो रोल होते हैं, एक प्राइवेट रोल अपने जीवन का और एक होता है ऑफिशियल ड्यूटी, जैसे वायु देव को हवा देनी है प्राण वायु, और पांच प्रकार के वायु सब जगह पर उसका नियंत्रण करना है। लेकिन वायु देव यहाँ पर मंद शीतल सुगंधित हवा भी देते हैं भगवान को, वो उनका हृदय से किया हुआ काम है, एक उनकी ड्यूटी है। वैसे शंकर भगवान का भी ये प्राइवेट रोल और ऑफिशियल ड्यूटी बहुत प्रसिद्ध है। ऑफिशियली शंकर महादेव जी जो है वो महादेव हैं, महादेव यानी ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी उनका पूजन करते हैं, ऐसी उनकी पोजीशन है। महादेव वास्तव में महादेव है, शंकर के लिए भी पूजनीय है। और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में आखिरी अध्याय में लिखा है कि शंकर भगवान जैसे परम वैष्णव और कोई है ही नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। और शंकर जी में और कृष्ण जी में कोई वाद नहीं है, लेकिन शंकर जी के फॉलोअर में और कृष्ण के फॉलोअर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाद है, वैष्णव और शैव इनके अंदर जमाने से वाद चल रहा है। तो हमको समझना जरूरी है कि ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो केवल मनुष्य की योनि में ही प्राप्त है। मनुष्य योनि दी किस लिए गई है? ताकि हम लोग ये ज्ञान प्राप्त करें और सत्य को समझें, सत्य क्या है। क्योंकि सत्य जब समझते हैं ना तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स झगड़े क्लियर हो जाते हैं। सत्य से अवगत होना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है मनुष्य जीवन में। सामान्य जीवन में भी सत्य नहीं पता होगा तो कितने सारे क्या कहते हैं उसको गलत फहमियाँ फैल जाती है, और सत्य पता पर नहीं चलता है कि इसका कारण ये था, इसलिए ऐसे हो रहा था, मैं बेकार में चिढ़ रहा था और गुस्सा कर रहा था। वो एक लौकिक स्तर पर हो गया, पारलौकिक स्तर पर अरे विष्णु कौन है, शंकर कौन है, देवी कौन है, गणेश जी कौन है, सूर्य कौन है, बाकी वायु और बाकी देवताओं का काम क्या है, उनके अंदर कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये पता होना ज़रूरी है। क्योंकि बाकी धर्म के लोग हमको क्या चिढ़ाते हैं, अरे तुम्हारे धर्म में तो 500 भगवान हैं, एक कोई फिक्स नहीं है। हर आदमी अपने अपने मन से अपने अपने भगवान को पूछता है, कोई पत्थर कोई लाल रंग लगा के पूजने लगता है, कोई गली में कोई रास्ते में फुटपाथ पे भी पत्थर को सिंदूर लगा दिया तो सब लोग फूल चढ़ाते हैं उसके ऊपर, इसलिए हंसते हैं वो। पर हमको पूछा जाए कि ऐसे कैसे भगवान हो सकते हैं, तो हमारे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। पापा ने फूल चढ़ाया था तो हम भी फूल चढ़ा रहे हैं, हम चढ़ा रहे हैं इसलिए हमारे बच्चे भी चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। वो फेमस कहानी है ना वो बिल्ली वाली, जब दुल्हन घर पे आती है तो बिल्ली को ढकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में एक बहू जब घर में प्रवेश कर रही थी तो बिल्ली बीच में आई तो सासू ने उसको ऐसा बंद कर दिया, तो घर के बच्चों को लगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट रिवाज है ये, तो दो पीढ़ियों ने वही किया। उन्होंने लगा कि मेरी माँ जब आई थी ना दुल्हन बन के तभी मेरे सासू जी ने ये किया था, तो तीसरी पीढ़ी थोड़ी होशियार निकली, वो दादी को जाके मिलके पूछते दादी जी इसका क्या मतलब है, अरे बेटी कुछ नहीं, जब ये तुम्हारी माँ जो है वो बहू बनकर आ रही थी तो बिल्ली बीच में आई तो मैंने इसलिए कवर कर दिया, बस कोई रिचुअल नहीं है। तब जाके वो भ्रम निराश हो गया। ऐसे हमारा जीवन है, ये हमारी जीवन की कहानी है, बिल्ली की कहानी उस परिवार की नहीं, वो हमारे जीवन की है। हम लोग कभी पूछते नहीं है ऐसा क्यों, और हमारे न पूछने से जो अज्ञान पैदा होता है उसके बाकी लोग फायदा लेते हैं, हमारा शोषण करते हैं। मैं खुद ना स्वयं बचपन में गणेश जी का और थोड़ा बड़ा होने के बाद शंकर जी का भक्त था, सिंसियर डिवोटी था एकदम। तो MBBS के लिए जब एडमिशन लिया तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं किया है सब, उसका भी एक बड़ा इतिहास है, कभी लिखूंगा मैं बताऊंगा आपको। तो MBBS जब एग्ज़ाम आई ना तो बहुत डर लगा मुझे, बाप रे इतना अच्छा करियर में अभी लगता है MBBS फर्स्ट MBBS में फेल हो जाऊंगा। तो हमारे घर के पास में पुर्तगीज चर्च के पास में वो शिव जी का मंदिर था, मैं उसको आके अभिषेक करने लगा हर सोमवार को, बोले भगवान इज्जत बचा लो। हर सोमवार को दूध का अभिषेक किया और केवल 3 से 5 सोया 2 महीने, पता नहीं कैसे जिंदा रहा। 3 to 5 AM ओनली 2 आवर्स स्लीप और बाकी सारे घंटे पढ़ाई। ऐसा करके फर्स्ट MBBS में फर्स्ट क्लास मिला मुझे। और फिर वो रिजल्ट लगने तक मैं अभिषेक करता रहा। फिर रिजल्ट लगा तो फिर ऋणी भाव से गया मैं और फिर अभिषेक किया। रवि बोला शिव जी से क्या मांगू, बोला थैंक यू वेरी मच। तो अभी बंद करना मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई वो काम के लिए गए, काम हुआ तो बंद। तो मैं हर सोमवार को जाता रहा। तो अभी मेरे पास मांगने के लिए कुछ नहीं था। आई एम हैप्पी, आई हैव गॉन टू सेकेंड MBBS। अभी और 1.5 साल के बाद में देखना है क्या करना है। तो मैंने शिव जी से कहा कि आपने मेरी इतनी प्रामाणिक मैंने प्रार्थना की, उसकी आपने सुन ली और मुझे उसका फल भी दिया, आपका बहुत ऋणी हूँ। अभी मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है जीवन, मेरा कल्याण किस में है वो आप कीजिए। तो क्या कहूँ, 3 महीने के अंदर मैं हरे कृष्णा मंदिर में था। मुझे अंदर ये एकदम ऐसा मराठी ना ठाम विश्वास, एकदम ऐसा गहरा विश्वास है कि शंकर जी ने मुझे कृष्ण के चरणों में लाया। तो ऐसा नहीं कि अभी मेरा शंकर जी को लेना देना नहीं है, क्या है काम हो गया, पोस्टमैन का काम हो गया, खत्म। मेरी शंकर जी में जितनी श्रद्धा पहले थी उससे हजारों गुना श्रद्धा आज है। का कारण क्या है, एक तो उन्होंने मुझे परम कल्याण के मार्ग में प्रवृत्त किया और उसके बाद जो मुझे शंकर जी के प्रति नॉलेज प्राप्त हुआ, तभी तक क्या नॉलेज था पता है आपको, इनके पास जाना है और मांगना है बस, दैट्स ऑल वी नो। हम लोग क्या करते हैं, गणेश जी के पास जाओ, मंगलवार को सिद्धि विनायक के पास हमारा घर था, हमने सबको देखा, एड़ी लंबी लंबी लाइन। वो जब अमिताभ बच्चन बीमार हो गया था ना, उसको पेट में कुछ हो गया था वो शूटिंग के ना, तो एक व्यक्ति सांता क्रूज से उल्टा चल के आया था सिद्धि विनायक तक, बैक वॉकिंग व्रत के रूप में, वो ठीक हो जाए इसलिए। तो हमने यही देखा है, जो भी आते हैं वो कुछ ना कुछ मांगते हैं और भी हर मंगलवार का नई लिस्ट लेके आते हैं, न्यू लिस्ट एवरी टाइम, इम्प्रोवाइज्ड न्यू एडिशन। तो हमने क्या, हमको क्या पता है कि जितने भी देवता है ना उनसे जाके मांगना है बस, ये दो वो दो, लड़की दो लड़का दो, नौकरी दो, लोन पास होने दो, घर दो, पैसा दो, ये दो सब दो, यही मांगना है बस। उनके प्रति हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो प्रसन्न है नहीं प्रसन्न है, वो क्या चाहते हैं, उनके क्या गुण है, गौरव क्या है उनका, वो कुछ नहीं मालूम है हमको। हमको बोले हमको क्या मिलना है, बस यही है। तो गणेश जी के पास जो लाइन लगाते हैं, देवी के पास लाइन लगाते हैं, शंकर जी लाइन, उनको उनके उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब महान हस्तियाँ हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सब कृष्ण के भक्त हैं A to Z। ये मैं कृष्ण का भक्त इसलिए नहीं बता रहा हूँ, शास्त्र में लिखा है कि शिव पुराण पढ़िए आप, पद्म पुराण पढ़िए, स्कंद पुराण पढ़िए, आप कौन सा भी पुराण लीजिए, वो सबकी कहानियाँ उसके अंदर है। आदिवारा पुराण में गणेश की कहानी है, शंकर की कहानी है, सबकी कहानी है, कैसे कैसे ये लोग अपने कृष्ण के भक्ति के लिए समर्पित हैं। तो वैसे महादेव जी का जो ब्रज में और ब्रज के बाहर कृष्ण के धाम में जो रोल है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट रोल है। हर कृष्ण के धाम में ये महादेव जी बैठे हैं, क्या कहते हैं उसको, धाम रक्षक के रूप में। उधर भी है मायापुर में भी क्षेत्रपाल महादेव योगपीठ में बैठे हुए हैं, क्षेत्रपाल यानी योगपीठ की रक्षा कर रहे हैं। हर भगवान के पवित्र स्थान पर शिवजी रक्षक हैं, वो धाम की पवित्रता, धाम की महानता, महिमा जो है उसका रक्षण करते हैं। तो संक्षेप में आपको कहानी बताऊंगा, पहले ये गोपेश्वर महादेव की कहानी बताने के पहले, ये शिवजी और पार्वती जी ने मिलकर एक व्रत किया था, उसका नाम है त्रैमासिक व्रत। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका पूरा डिटेल वर्णन दिया है। वो ऐसा व्रत था, मुझे भी पूरा टेक्निकली उसका याद नहीं, लेकिन एक एक फल एक फूल होता है इसका नाम है सौगंधिका, कितने लोगों ने सुना है उसके बारे में। ये महाभारत में भीमसेन को द्रौपदी ने भेजा था, ये फूल उड़ता उड़ता इधर आया हुआ है हमारे वनवास में, ये मुझे चाहिए। तो भीमसेन उसको ढूंढने गए थे और रस्ते में हनुमान जी की मुलाकात हुई थी और वो सौगंधिका फूल उनको पता चल रहा था कि मानस सरोवर जो है ना ऊपर कैलाश मानस सरोवर, उसके पास उसमें ये आता है। तो ये सौगंधिका नाम का कमल होता है, उसके अंदर 1000 पगड़ियाँ होती है, 1000 पेटल्स, और केवल उसी कुंड में आता है वो। और पार्वती जी शिव जी के गणों के सहायता से उसको पैदा करती थी, कल्टीवेट करती थी, और एक हफ्ते में ये नंबर समझो 501 फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल रहा हूँ आपको, बोले अगले हफ्ते में 1001, उसके अगले हफ्ते में 1500, ऐसे तरह से उसका नियम था। और त्रैमासिक व्रत मतलब कितने होते हफ्ते, 12 हफ्ते होते ना, 4 × 12, तो ऐसे बढ़ते हुए नंबर में सौगंधी का फूल कृष्ण और राधा रानी के विग्रह को अर्पण करना है, व्रत रखना है, बहुत सारी चीज़ें पूजन करना है, ऐसा बहुत मेटिकुलस हाँ कूट वृत्त तरीके का व्रत उन्होंने 3 महीने दोनों ने मिलकर किया, पति पत्नी ने। और वो व्रत के संपन्न होने पर राधा कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको वरदान दिया कि हमारे नित्य धाम वृंदावन में आप जहाँ मर्जी है वहाँ रहो, सब जगह रहो या एक जगह रहो, कहीं भी है रहो। मुझे सुनकर एक याद आती है कि भक्तिविदांत हॉस्पिटल ने जब ये मेडिकल सर्विस शुरू की थी ना ठाणे जिला में, तो हमको ना केवल एक ही छोटा सा विभाग दिया था कि इसी में आपको वो काम करना है और कहीं भी चैरिटी काम नहीं करना है, आपको चैरिटी करने के लिए यही इलाका दिया है, बस उसमें ही करना है। तो वो इलाके में हमने इतना सुंदर काम किया, तो एक वर्ष साल के एंड में ठाणे जिला के प्रशासन ने कहा कि ठाणे जिला में कहीं भी आप अपना चैरिटी कर सकते हो। तो मुझे शिवजी के बारे में याद आती कि शिवजी ने ऐसा सुंदरता से पार्वती के साथ शंकर जी को प्रसन्न किया कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरे धाम में आप कहीं भी रह सकते हो। तो इसलिए ब्रज धाम में आपको अनंत जगह पर देवी के अनंत रूप मिलेंगे और शंकर जी के भी अनंत रूप मिलेंगे। जैसे एक रूप उनका है उधर गोकुल में चिंता हरण महादेव, जैसे वो बाल कृष्ण का रूप देखने के लिए नंदगांव आए थे, नंदगांव में तो उनकी उम्र 3 साल के ऊपर हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो नन्हे से बालक थे तो देखने के लिए आए थे, तो उनका नाम है चिंतारण महादेव। जब नंदगांव में आए तो उनका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। जब काम्य वन में निवास करते उनका नाम है कामेश्वर महादेव, जिनका राधा रानी के पिताजी ने पूजन किया था कन्या प्राप्ति के लिए। खुद बरसाने में भी एक महादेव जी है, प्राचीन बज्रनाभ के द्वारा बनाए गए हैं, ब्रजेश्वर महादेव, वहां पर उन्होंने तप किया था। फिर मैंने आपको गोवर्धन में बताया चक्रेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव, और यहां पर गोपेश्वर महादेव। वो उनका प्राइवेट जीवन है, मतलब मैं एक नौकरी कर रहा हूं और एक मेरा प्रोफेशन है, आपका जैसा आईटी है, आपका आईडी का एक काम है 8 घंटे का 12 घंटे का जो भी है, लेकिन घर में आके आप गिटार बजाते हैं या घर में आके आपको रोटी बनाना अच्छा लगता है इसलिए आप रोटी रोज मजे से रोटी बनाते हैं, आपका शौक है, या कोई किसी को और कोई छंद है स्टैम्प इकट्ठा करने का, वो कोई ड्यूटी नहीं आपकी, वो दिल से करते हैं। वैसे ये शंकर जी अपना काम तो संभालते हैं बढ़िया, लेकिन ऑफ ड्यूटी जो है भगवान की प्रेम से सेवा करते हैं। जैसे जन्म हुआ था ना कृष्ण का, तो ये और माता भवानी जो है पति पत्नी गणेश जी को लेकर गए थे नंदी पर बैठकर, तो नंदी बैल है और गणेश जी हाथी का सर लेकर बैठे हुए हैं, तो उधर नंद बाबा जो है ना वो ऐसे भाव में थे, अरे कन्हैया का जन्म हुआ है, आनंद के आनंद भयो, नंद के घर में अभी लाला हुआ है, तो वो सब लुटा रहे थे, सब खारे भंडार खोल रहे थे, वो लुटा रहे थे वो। तो उन्हें एक समय पर क्या किया, गाय बैल दान करना शुरू कर दिया। तो शिवजी ने अपने नंदी का पूंछ पकड़ा, तो ये भी ना बट जाए, इतना भाव में बांट रहे तो किसका बैल है पता नहीं है, तो वो भी बट जाएगा दान में, तो मैं कैसे जाऊंगा वापस मेरे कैलाश में। और जब हाथी बटने लगे तो तुरंत पार्वती ने गणेश जी को गोद में लिया, तो ये बट ना जाए भाई हाथी के रूप में। लेकिन जब राम का जन्म हुआ था तभी भी गए थे ये, जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तभी भी वो नवद्वीप पहुंचे थे, भेष बदल कर ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर दर्शन करने गए थे। सो दिस इज पार्वती एंड शिवा। हमारे भक्ति में जीवन में ना 5 प्रमुख देवता हैं जो हमको उनका पूजन करना है। एक सर्वोत्तम कृष्ण है, उसके बाद शिव जी हैं, उसके बाद पार्वती जी हैं, उसके बाद गणेश जी हैं, और लास्ट है सूर्य नारायण भगवान। ये 5ों का हमें पूजन करना है वैदिक संस्कृति के अनुसार। हम सब जानते हैं कि कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हम जानते हैं उस बात को, लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति करने के लिए भी कुछ लोगों की इम्पोर्टेंट सहायता होती है। जैसे देवी जो हमारे सारे सृष्टि का और हमारे जीवन का मेंटेन करते हैं, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते अरे कृष्ण के भक्त हम किसी को मत्था नहीं टेकेंगे, हम तो एक ले कृष्ण हर सब भृत्य, हाँ ये भी डायलॉग है हमारे बंगला में, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्य, वो नौसिखिया लोगों के लिए है ताकि उनका मन कृष्ण में लग जाए। कोई हमारा मन कहाँ लगता है, जहाँ कुछ मिलता है तो जल्दी गणेश में लग जाता है, शंकर में लग जाता है, क्योंकि हम लोग मांगने जाते हैं वहाँ पर। तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो पांच चीज़ें हैं, पांच व्यक्ति हैं, इनका हमारे घर में पूजन होना चाहिए। हर भरे रोज ना हो लेकिन कभी उत्सव में, हमेशा जब मैं यज्ञ करता हूँ तो उसमें गणेश जी पार्वती जी शिव जी को आह्वान करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उनका सेवा करता हूँ, उनकी कृपा याचना करता हूँ, फिर उनको रखता हूँ, फिर आगे का कार्य शुरू करता हूँ। रूप गोस्वामी बताते हैं अपने उपदेश भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कि हर एक पवित्र कार्य, भले वो कृष्ण भक्ति में हो या कोई और शादी वगैरह का कार्य हो, उस पर गणेश का पूजन होना ही चाहिए। गणेश का पूजन किए बिना, उनको संतुष्ट किए बिना आपके कार्य में सिद्धि नहीं होगी। निर्विघ्नम कुरुते देव सर्व कार्येषु सर्वदा, निर्विघ्न करो भगवान, आपकी शक्ति है वो। तो भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो निर्विघ्न चाहिए ना रास्ता आपका, भक्ति में कितने विघ्न आते हैं। तो अगर गणेश जी को पुकारेंगे तो वो आपके विघ्न दूर करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि मेरा उस लड़की पर प्रेम हो गया है, उसकी शादी में जो विघ्न है वो निकालो। हमारे विघ्नार्थ का अंडरस्टैंडिंग यही है, मेरे स्वार्थ में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न हटा दो। वो हटा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका अधिकार है वो। लेकिन वो ज़्यादा खुश होंगे अगर आप उनको बोलेंगे मेरी भक्ति के मार्ग में जो विघ्न है उसे आप हटा दो, ताकि मैं मेरे भगवान की भक्ति अच्छी कर सकता हूँ। क्योंकि वो स्वयं उस भगवान के भक्त है जिसकी आप मार्ग की विघ्न को हटाने की विनती कर रहे हैं। दे अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, उनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, अरे मेरे को छोड़कर भी उसको पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्वयं उनके भक्त हैं लेकिन अधिकार प्राप्त है वो हम लोगों को सबको सहायता करने के लिए। तो शिव जी का अर्थ क्या है, शिव यानी पवित्रता, शिव यानी प्यूरिटी, ऑस्पिशियस। तो हमारे जीवन में हर प्रकार से हम लोग ना उनको मांगते नहीं है कि भक्ति दो, जीवन का कल्याण का मार्ग दिखाओ। सब लोग मांगने जाते हैं भौतिक वस्तु जो खत्म होने वाली है, बट वो आप, हम सब लोगों को ये पांच में से हर एक व्यक्ति कृष्ण के प्रति आपको भक्ति दे सकते हैं। हम मांगते नहीं हैं इनसे, गणेश से मांगते नहीं हैं, देवी से मांगते नहीं हैं, शंकर जी से मांगते नहीं हैं, सूर्य भगवान से मांगते नहीं हैं। ये सूर्य भगवान इतने महत्वपूर्ण हैं, एक संत थे ब्रज के हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिन्होंने गीता प्रेस का निर्माण में बहुत भयंकर कार्य किया है, बहुत हम ऋणी है बहुत। आज भी 150-200 रुपये में इतने बड़े बड़े ग्रंथ देते हैं वो, वन ऑफ आइड एकदम, कोई आँख बंद करके पढ़ सकते हैं आप, कोई इसमें निर्विवाद ऐसा कुछ वाद नहीं है उसके अंदर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कमेंट्री नहीं है। श्लोक ले लो ओरिजिनल, अपने गुरु से पूछो। तो वो सिद्ध थे, बड़े भक्त थे, तो लोगों को लगा कि अरे इनको तो भगवान का दर्शन हो गया है, तो सब लोग पहुंचे उनके पास, हमको भी भगवान का दर्शन कराओ फ्री में बिना तपस्या किए हुए। तो उन्होंने कहा आ जाओ सब लोग ऋषिकेश के गंगा किनारे आ जाओ, उन्होंने जगह बता दिया, सब लोग वहाँ पर जमा हो गए। बोले सूर्योदय के पहले आ जाओ, मैं दिखा दूंगा दर्शन। तो सब लोग इकट्ठा हो गए अंधेरे में, और हनुमान प्रसाद जी भी खड़े हैं, और लोग भी जमा उड़े हजारों की संख्या में, और सूर्य का उदय हुआ। तो उन्होंने कहा ये देखो भगवान का दर्शन, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं गीता में कि स्वयं मैं सूर्य, मेरी आंखें जो है वो सूर्य है। और आप विचार कीजिए, भगवान ने बहुत कुछ कथा बताया है, लेकिन रोज दर्शन देने वाले भगवान का स्वरूप एक ही है, सूर्य नारायण, जो आप रोज देख सकते हैं। और वास्तव में उनका दर्शन करना ही भगवान के दर्शन करने जैसा ही है। इसलिए आर्य संस्कृति के प्रगत व्यक्ति को हर रोज सूर्य को अर्घ देना चाहिए, हम सब लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, सब लोगों को हर रोज सूर्य के 12 नामों का उच्चारण करके, और कई मंत्र हैं उनके, वो करते करते सूर्य को जल देना चाहिए। खास करके मुझे, जो मैं पुरोहित हूँ, किसी के घर में यज्ञ करता हूँ मैं, तो मुझे करना ही करना है, लेकिन बाकी लोगों को भी करना है। ये कोई देवता पूजन नहीं है। काम ऐसा रित ज्ञाना प्रपद्यंते अन्य देवता, जो काम के द्वारा क्या कहते अधीन हो जाते काम के, काम वासना के वजह से उनकी बुद्धि मारी जाती है, तब वो देवताओं के पास पहुंचते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। ऐसे भगवत गीता में लिखा है। तो ये काम वासना पूर्ण करने के लिए अर्घ नहीं दे रहे हम उनको, हमारे जीवन का कल्याण किसमें है वो प्राप्त करने के लिए उनका भजन कर रहे हैं, वो हमको आरोग्य देते हैं, तो जरूरी है हमको भक्ति करने के लिए। लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं हम लोग दिवाली के दिन, खाली धन प्राप्ति के लिए नहीं, वो चंचला लक्ष्मी जो है वो नारायण का पूजन करके स्थिर हो जाती है, नहीं तो वो भटकती रहती है, कहीं आपके पास कभी आती है कभी चली जाती है। तो नारायण का पूजन करते हैं फिर लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी हमको चाहिए क्योंकि लक्ष्मी से ही भजन कर सकते हैं। देखो अभी इतना इक्विपमेंट लगाया है यहाँ पर यात्रा में भगवान की कथा सुनने के लिए, तो सब में खर्च है, वो कुछ 1,00,000 रुपये का है, ये कुछ 20,000 रुपये का है, ये कुछ 15,000 रुपये का है, ये सब कुछ धन से आया है। ये रिकॉर्डिंग का जो है ये भी 22,500 रुपये का है, डिस्काउंट पर लाया हो दुबई से। हाँ सब करते हैं नेगोशिएशन, यहाँ पर भी करते हैं वहाँ पर भी करते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, अभी आप यात्रा कर रहे हो आपने भी कुछ धन दिया है कि नहीं, तो लक्ष्मी जी का पूजन करना पाप नहीं है। लक्ष्मी जी को प्राप्त करके इंद्रिय भोग में लगाना पाप है, भगवान की सेवा के लिए उसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमको ये मन में से निकालना चाहिए, दो प्रकार के वाद है। कुछ लोग हमसे विवाद करते हैं कि नहीं नहीं हम कृष्ण को नहीं मानते, हम खाली शिव जी को मानते, और कृष्ण भक्ति वाले बोलते हैं हम लोग शिव जी को नहीं मानते, हम खाली कृष्ण को मानते, हम किसी को नहीं मानते। लेकिन ये दोनों का ना रिकंसिलेशन होना जरूरी है, समन्वय होना जरूरी है कि दोनों की पोजीशन क्या है और वो दो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो एक दूसरे के बारे में मोर देन वॉट यू थिंक अबाउट देम। सो भगवान में और बाकी देवता में कोई वाद नहीं है। और अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कहानी, हमारे शिव जी महाराज ये व्रत करने के बाद में ब्रज में निवास करना शुरू कर दिए, फिर आई बारी गणेश जी की, हाँ उनको भी भगवान ने ब्रज में स्थान दिया है लेकिन लिमिटेड स्थान दिया है। बलि महाराज एक बार सत्ययुग में उनका जन्म हुआ, तो सत्ययुग में उनका जब जन्म हुआ तो वो एक तो दैत्य हैं स्वयं, लेकिन भगवान के इतने प्रचंड भक्त हैं होने पर भी, लेकिन फिर भी दैत्य के पक्ष में अपना काम कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी को इतना प्रसन्न करते हैं, उनके द्वारा यज्ञ करते हैं, इतना बल प्राप्त करते हैं, इतना तेज प्राप्त करते हैं कि कई बार उन्होंने वैष्णवों को ब्राह्मणों को संतुष्ट कर करके देवताओं को परास्त किया। एक बार तो ऐसे प्रकट हो गए देवताओं पर आक्रमण करने के लिए, उनका तेज देख कर सारे देवता भाग गए, युद्ध करना छोड़ दो, तो देखा उनको और भाग गए सब लोग। तो फिर सब लोग विष्णु के पास गए, बोले भाई बलि महाराज तो बड़े प्राव शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, तुम तो खड़ा रहना भी मुश्किल है। तो भगवान ने कहा गणेश जी के पास जाओ और उनका पूजन करो, उनको रिक्वेस्ट करो कि हमारे सेनापति बनो और हम युद्ध करेंगे। तो सब लोग गणेश जी के पास गए, गणेश जी की सेवा की, प्रसन्न किया उनको, उन्होंने कहा हमारा निवेदन है कि भगवान की इच्छा से आप हमारे सेनापति बनो। तो गणेश जी ने हाँ कर दी और सेनापति बने देवताओं के, और राक्षसों को दैत्यों को आह्वान दिया, चुनौती दिया। तो वो ना वो कैसा था ना, बाली था ना बाली, वो हमेशा पीटता था सुग्रीव को, और वही पीटा हुआ सुग्रीव जाके चैलेंज दे रहा है, बोला अभी तो पीटा था उसको मैंने, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई उसके अंदर वापस चैलेंज देने की। तो तारा भी कह रही है अरे सोच समझ के चलना, क्योंकि वो कल का पीटा हुआ आज आपको चैलेंज कर रहा है, मतलब कोई पीछे उसका बड़ा व्यक्ति आ गया है। तो बलि को भी आश्चर्य हुआ, अरे अभी भी पीटा था उनको मैंने देवताओं को, अभी अभी कैसे खड़ा हो गया मेरे सामने, चलो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, अगर मुझे चैलेंज दिया है तो मैं जाऊंगा युद्ध में। और फिर वापस दैत्यों को लेकर वो आया सेनापति बनकर स्वयं देवताओं दैत्यों का, और देव दैत्यों का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। उसमें गणेश जी ने इतना सुंदर पराक्रम किया कि बलि से बलि के साथ सारे दैत्यों को उनने बेहोश कर दिया युद्ध में, और वो वेट करते रहे क्योंकि बेहोश व्यक्ति को कोई क्षत्रिय कभी युद्ध नहीं करता है, रथहीन व्यक्ति से कभी युद्ध नहीं करता है, शस्त्रहीन व्यक्ति से कभी युद्ध नहीं करता है, भागने वाले व्यक्ति से कभी युद्ध नहीं करता है, सामने खड़ा है शस्त्र लेकर या रथ में खड़ा है तो युद्ध करेंगे। तो ये तो बेहोश हो गए, तो फिर वो रुके रहे, लेकिन इतना दहशत गणेश जी ने पैदा किया कि जब होश में आए बेहोशी से तो बलि सहित सब दैत्य भाग गए, वो दोबारा खड़े नहीं रह पाए और देवताओं की विजय हुई। तो उधर काम्य वन में चतुर्भुज नारायण का एक स्थान है जो विरजा गोपी के साथ उनका विवाह हुआ है। बहुत बड़ा सुंदर आदिवारा पुराण में उसका वर्णन है। वो बहुत लंबी चौड़ी वेदी पर चतुर्भुज नारायण और विरजा गोपी का विवाह हुआ था। उसी वेदी पर अभी आज राधा गोविंद जी, तुलसी देवी और जगन्नाथ जी खड़े हैं। वही वेदी है, वो उनकी विवाह की वेदी है। वहाँ पर बैठ के दोनों का जुगल जोड़ी का चरण धोया था, तो चरणामृत कुंड बना हुआ उसके पीछे है वो। तो वो चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, आप काम में वन में रह सकते हो, आप रहो यहाँ पर। और किसको निवास है? सुदर्शन चक्र को उधर गोवर्धन में निवास दिया, चक्र तीर्थ में। हनुमान जी को बाय डिफॉल्ट सब जगह एंट्री है, लेकिन भाई और बहनों इसके अलावा किसी देवता को एंट्री नहीं है। सारे देवता ब्रज के बाहर अपना व्हीकल रखते हैं, नंगे पैर अंदर आते हैं, दिन दिन में अपना भगवान जो भी कुछ काम होगा करते हैं। रात को रोने का कोई इंतज़ाम नहीं है उनके लिए, भोजन का भी इंतज़ाम नहीं है। और हम लोग तो ऐसे ही कुछ कुछ रुपये देकर यहाँ पर महाप्रसाद राधा वल्लभ जी का खा लिया, आज दामोदर जी का भी खा लिया, बरसाने में भी खा लिया गौशाला में, और राधा रमन जी का क्या आनंद आया वो दिन, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार राधा रमन जी का प्रसाद खाया है, वही आनंद मुझे इस बार भी आया। राधा रमन जी ऐसा लग रहा था कि साथ में बैठे हैं प्रसाद के रूप में। तो गोपेश्वर महादेव की कथा ये है कि भगवान एक एक मुनि थे, मुनि उनका नाम था आसुरी मुनि, नाम ही आसुरी था, वो आसुरी नहीं थे, सिद्ध महात्मा थे वो। उनको ना हर रोज अपने ध्यान में भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ करता था। हमारा देश ऐसे अनंत संतों से समृद्ध है, जिसमें अनेक साधु ऐसे हैं जो रोज भगवान का ध्यान में दर्शन करते हैं। ड्रीम देखते नहीं है इमेजिनेशन करके। अपना कैसा होता है, दिन में हम लोग सोने की दुकान में जाते हैं और सोने का देखते हैं, सोने को देखते हैं, स्वर्ण को देखते हैं, और फिर घूमने जाते हैं तो पहाड़ को देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस व्यक्ति को रात को सोने के पहाड़ का स्वप्न आता है, मतलब सोना और पहाड़ ज्वाइन करके स्वप्न में सोने का पहाड़ देखता है वो। तो ये सब कल्पना है, वास्तविक स्वप्न नहीं है, सत्य नहीं है वो। लेकिन हमारे देश में खास करके धाम में, एकांत में, कहीं पब्लिक में दिखाई नहीं पड़ेंगे ऐसे लोग आपको, जो हर रोज़ अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करते हैं। तो वो आसुरी मुनि रोज़ भगवान का दर्शन करते थे, एक दिन उनका दर्शन ही नहीं मिला उनको, मतलब बहुत कोशिश की ध्यान लगाने की, कुछ दर्शन ही नहीं हुआ। तो बड़े सिद्ध महात्मा थे वो, बहुत बड़ी पहुँच थी उनकी। तो वो इंद्र के पास गए, उनको पूछा तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड्स, बोले कृष्ण कहाँ है, वो ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो आखिर में शिव जी के पास पहुँचे। तभी शिव जी कैसे ना, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, हमेशा ऑलवेज मेडिटेटिंग। उस दिन शिव जी ध्यान में नहीं बैठे, शिव जी कुछ तैयारी कर रहे हैं, एज इफ गोइंग समवेयर। समझो अभी मैं वृंदावन निकल रहा हूँ और आप मुझे मिलने आते, तो मैं कैसे, तुम जरा बिजी हूँ, आप बात करते रहना, मैं तो आप देखिए मैं बैग भर रहा हूँ, कपड़े निकाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, कपड़ खोल रहा हूँ, रख रहा हूँ, तो आपको लगता है कि भाई कहीं जा रहे हैं प्रभु जी। वैसे शिव जी कुछ जाने की तैयारी में दिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हैं आप, पहले पूछा कि वो कृष्ण दिखाई नहीं पड़ रहे किधर हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अभी वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में अमुक तमुक पृथ्वी लोक पर रास रचाने जा रहे हैं और मैं वो देखने जा रहा हूँ। तो शिव जी ने, आसुरी मुनि बोले, अरे चलो मुझे भी देखना है, क्योंकि वो ध्यान में नजर नहीं आ रहे, तो मैं आपके साथ चलता हूँ, दर्शन हो जाएगा उनका। तो दोनों नीचे उतरे और सीधे रास मंडल पर पहुंचे। रास मंडल कहाँ पर है, बंसीवट पे है, प्रमुख प्रथम रास मंडल, यानी प्रथम जब भगवान ने रास रचाया तो वृंदावन में अपने सर्वोत्तम प्रिय वन में बंसीवट के इर्द गिर्द यमुना किनारे रास रचाया। तो सीधे वहीं पहुंच गए। अब वहां पर सेटिंग कैसा है, वृंदा देवी के नेतृत्व में, ललिता विशाखा गोपी के निर्देश में पूरा विशाल आयोजन है वहां पर, करोड़ों गोपियां वहां पर सज धज के खड़ी हैं, उसमें हजारों गोपियां जो है वो रक्षा में है उसके, रास मंडल के कोई अयोग्य व्यक्ति आ न जाए, अंदर पूरी ठाट की व्यवस्था है। उस रास मंडल के बीच में रत्न सिंहासन है, उसमें राधा और कृष्ण विराजमान हैं, सुशोभित पूरा श्रृंगार किए हुए, उनके इर्द गिर्द 8 गोपियां हैं, उनके इर्द गिर्द 1-1 करोड़ गोपियां, 8-8 गोपी, 1-1 गोपी की 1-1 करोड़ गोपियां हैं। एक करोड़ गोपियां नहीं है, एक एक सखी की 3 मंजरियां हैं और हर एक मंजरी की 1 करोड़ सेविकाएं हैं। तो एक गोपी की अष्ट सखी में से एक पे एक की 3 करोड़ सखियां हैं, 3 करोड़ और 1, 3 करोड़ और 3, क्योंकि 3 मंजरी भी है उसके अंदर। ये प्राइवेट सर्कल है, उसके आगे सेकेंडरी, टर्शरी, सहचरी, किंकरी, ऐसे बहुत सारे सखियां हैं, वो सब वहां पर अपना अपना पोजीशन लेके खड़े हैं और रास की शुरुआत होने वाली है। उतने में शिवजी ने भाग भाग के आते हैं वहां पर आसुरी मुनि को लेकर, तो गोपियां उनको रोक लेती है। बोले कहाँ जा रहे हैं हम? तो रास में जा रहे हैं। बोले नहीं, रास में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं, एक ही परम पुरुषोत्तम यहाँ पर है जो विराजमान है, और आपको जाना है तो आपको पहले स्त्री बनना पड़ेगा। तो इनके मन में एक क्षण भी विचार नहीं आया, मैं स्त्री बनूंगा तो क्या होगा। वो कंस जब स्त्री बना तो कितना संकोच हुआ उसको, वहां जाऊं तो क्या होगा, यहां पर लड़कियां हंस रही है, कितना संकोच हुआ, कितना विचार कर रहा है वो, 6 महीने तड़पता रहा, वाई आई एम अ वुमन। शंकर जी यहां पर केवल एक क्षण में भी सोचते नहीं है, बोले कैसे बनना है बताओ। तो इनका उत्सुकता यानी ईगरनेस देखकर ना वो बहुत प्रभावित हो गए गोपियां। ये भी नहीं सोचा पार्वती क्या कहेगी, कि मेरे पति देव को क्या हो गया, मेरे एक ही पति देव थे, अभी देखो वो तो कन्या बन गए, उनका भी नहीं विचार किया। सेवा भाव में ना कोई बाधा नहीं होती है, सेवा भाव जो होता है ना वो ऐसा अप्रतिहता होता है, अनइंटरप्टेड। तो उन्होंने कहा कि जमुना जी के पार एक मान सरोवर है, उसमें आप स्नान करोगे तो गोपी शरीर प्राप्त करोगे। वे मान सरोवर क्या है बताना जरूरी है। राधा रानी जब रूठ जाती है तो बहुत सारी जगह पर जाकर बैठ जाती है रूठ कर। तो एक बार वो जमुना पार जाकर बैठ गई थी रूठ कर, और रूठ कर इतने क्रोधित गर्म आंसू बहाए थे कि उसका एक विशाल कुंड बन गया था, आज भी है वो, बहुत विशाल और बहुत सुंदर प्रमणिक और तीव्र स्थान है वो, इंटेंस प्लेस ऑफ सेपरेशन ऑफ राधा रानी फ्रॉम कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ हॉट टीयर्स। तो वहां जाने को कहा, तो ये तुरंत छलांग लगाई जमुना जी के ऊपर, पार गए, मानसरोवर पहुंचे, वहां पर छलांग लगाई उसमें, और तुरंत गोपी शरीर लेके बाहर आ गए एक क्षण के अंदर। वैसे ही छलांग लगाई उल्टी और भाग के रास मंडल के पास में आ गए। तो उनको देखकर ना सखियां हंस पड़ी। क्यों हंस पड़ी? क्योंकि जो सांप थे उनके ऊपर वो गोपी नहीं बने, वो सांप ही रहे, खाली वही गोपी बने। अभी समझो आप इतनी औरतें यहाँ बैठी है, समझो अभी आपके सर के ऊपर एक नाग, गले में एक नाग, हाथ में एक नाग, इधर हथेली पे एक नाग, ऐसा रूप में आप आएंगे कैसे देखेंगे आप? हाँ बोले कौन सा समुदाय है ये, कौन से मंदिर से आया है, ऐसे पूछेंगे ना। तो ये हंसे मतलब एक क्या कहते हैं उसको, नॉट रेडिकुलिंग, यानी उपहास में नहीं हंसे, गौरव में हंसे। देखो कितने उत्सुक है, उनको पता भी नहीं कि नाग भी थे मेरे ऊपर और वो गोपी नहीं बने, भान ही नहीं उनका, इतने भाव में थे वो, तो नाग क्यों नहीं बने मानसरोवर में बताइए? क्योंकि नाग नहीं बनना चाहते थे गोपी, ये बनना चाहते थे नाग, तो अकम्पनीमेंट थे भाई, वी ऑल्सो वेंट इन मानसरोवर, लेकिन उनका भाव नहीं था। तो वो भाव था इसलिए उनको गोपी शरीर प्राप्त हो गया, क्योंकि गोपी भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका परिणाम गोपी शरीर है। अगर भाव ही नहीं तो शरीर का क्या करना है, भाव के बिना शरीर डेड है आपका। तो वो इनकी इतनी आतुरता, उत्सुकता और प्रेम देखकर वो बहुत प्रसन्न हो गए गोपियाँ, कि देखो उनको अपने शरीर में और भी कोई जीव है इसका भान भी नहीं है, इतने भगवान की सेवा में उत्सुक हैं। तो अपने आप गोपियों ने बड़े प्रेम से वो गोपी बने हुए शंकर जी का श्रृंगार किया। अभी गोपी तो बने ना, लेकिन श्रृंगार नहीं है, तो पूरा 16 श्रृंगार किया उनका, और सजा धजा कर वो शिवजी महाराज जो अभी गोपेश्वर बने हैं उनको सजा धजा कर हाथ पकड़कर पूरे रास मंडल के अंदर बीच में लेके गए, जहां पर राधा और श्याम सुंदर जी विराजमान हैं, और एकदम उनके पास में, यानी कि अष्ट सखियों का भी लेवल पार करके रत्न सिंहासन के पास खड़ा कर दिया उनको, और उनके हाथ में चमर दिया, बोले करो सेवा। तो उन्होंने उनकी चमर सेवा की। चमर डुलाबो खोबे हेरी बो मुख चंद्र। चमर सेवा कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, और जिनकी सेवा करें उनको देखते हैं, फिर ऐसे करते हैं फिर उनको देखते हैं, फिर ऐसे करते हैं उनको देखते हैं, दोनों करते हैं चामर सेवा। बड़े प्रेम से दोनों के मुख कमल को निहारते हुए प्रेम से उन्होंने चामर सेवा किया और फिर ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। उन्होंने कहा ठीक है अभी आप रास मंडल के बाहर चले जाओ और बाहर बैठकर रास का दर्शन करो और रास मंडल की रक्षा भी करो। तो सखी उनको वापस लेके आई और वही सखी के रूप में, गोपी के रूप में वो रास मंडल के बाहर बैठे बिठाया उनको और वहाँ से पूरा रास का दर्शन किया उन्होंने और आज भी बैठे हुए हैं। उनका नाम है गोपेश्वर महादेव। वो तो शिवलिंग है वैसे, लेकिन हर शाम को वो शिवलिंग को गोपी बनाते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं कि गोपी बनकर अभी रास में दर्शन करेंगे इस भाव से। आसुरी मुनि भी गोपी बने हैं लेकिन उतना इतना बोलबाला नहीं है जितना शिव जी का है। और एक रहस्य की बात मैं और बताना चाहता हूँ। आपकी रोज की प्रार्थना में आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, रोज प्रार्थना करना चाहिए, तो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, फिर वृंदावन धाम को प्रार्थना करते हैं, फिर जमुना जी को प्रार्थना करते हैं। ये सिक्वेंस है, आप लोग लिख सकते हैं, कृष्ण को प्रार्थना किया, राधा रानी को प्रार्थना किया, फिर वृंदावन को प्रार्थना करना है, फिर जमुना जी को प्रार्थना करनी है, फिर गिरिराज गोवर्धन को प्रार्थना करनी है, फिर गोपेश्वर महादेव को प्रार्थना करनी है, बताता हूँ क्यों, उसके बाद वृंदा देवी को प्रार्थना करनी है, उसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड को प्रार्थना करनी है, उसके बाद उज्ज्वल सुबल सखा को प्रार्थना करनी है, उसके बाद ललिता विशाखा गोपी को प्रार्थना करनी है, उसके बाद बरसाना के लाडली लाल को प्रार्थना करनी है और श्री कृष्ण बलराम को प्रार्थना करना है, तब आपकी पूरी प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि ये सब लोग अपने अपने कृपा से हमारी भक्ति को बढ़ाते हैं। गोपेश्वर जो है वो वृंदावन के शिव जी हैं, वृंदावन के महादेव हैं, वो हमारे ब्रज भक्ति में बहुत सहायता करते हैं। वो शिव जी नहीं है जो प्रलयंकारी कार्य करते हैं, हाँ वो प्रलय काल में सब डिस्ट्रॉय करते हैं, वो नटराज है, वो कला के भी देवता हैं, वो रूप में यहाँ पर नहीं बैठे। वो घर में, मैं कभी हॉस्पिटल के रोल में बैठता नहीं हूँ, घर में मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का बहन हूँ, किसी का चाचा हूँ, मेरा घर में कोई ऑफिस का कोई रोल नहीं होता है, मैं अपने रोल में हूँ घर में। तो वो अपने रोल में यहाँ पर बैठे हैं, कोई ऑफिशियल रोल में नहीं बैठे यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी देवता ऑफिशियल काम नहीं करते, वो सब प्रेम से भगवान की सेवा करते। तो वो धाम के रक्षक है और धाम की भक्ति भी आपको देने वाले हैं। वैसे भी ऑफिशियल रोल में भी वो कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं, कोई मांगता नहीं है, लेकिन धाम में बैठकर वो धाम की भक्ति जरूर देते हैं। इसलिए ब्रजवासी जो है ना वो भोले बाबा को बहुत मानते हैं। ऐसा कितने लोग मैं जानता हूँ, जो मैं जानते नहीं हूँ तो और बहुत नंबर है, जो हर रोज़ गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। कुछ लोग हर रोज़ दामोदर का दर्शन करते हैं और परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग यहाँ से जाकर गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। ऐसे कितने ब्रजवासी हैं जो हर दिन हर सीजन में रोज 3 बजे जमुना जी में स्नान करते हैं। कितना सारा वो आतंक बीच में हो गया, जमुना जी मैली हो गई है, उसमें मल मूत्र बह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रोज अपना रोज श्रद्धा से स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे ब्रजवासी जो पक्के कर्रे भगवान के भक्त हैं, वो गोपेश्वर बाबा के पास आके मत्था टेकते हैं रोज। कोई मांगने के लिए नहीं, लड़के की शादी होने दो, लड़का की शादी होने दो, स्कूटर दो, मोटरसाइकिल दो, उसके लिए नहीं मांगते, वो प्रेम मांगते हैं वो, क्योंकि वो प्रेम शिव जी के पास है, जो स्वयं प्राप्त कर चुके हैं एज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और ये बंसीवट के बाजू में खड़े, तो बंसीवट वो रास मंडल है जो भगवान ने सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन 7 साल के आयु में सबसे पहले बंसी बजाई और रास आरंभ किया। ये रास ऐसा विषय है, उसके बारे में गलत फहमियाँ 99% है और जानकारी 1% है लोगों, अधिकतर 99% कन्फ्यूजन है, कुछ कुछ उल्टा सुलटा बोलते रहते हैं रास के बारे में। लेकिन रास क्या है, हमको रास लीला का बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि रास लीला बहुत उत्कट लीला है, लेकिन एटलीस्ट टेक्निकली हमको समझना ज़रूरी है कि रास लीला यानी रास लीला जो नृत्य है उसके माध्यम से भगवान अपने भक्त के प्रति सर्वोच्च प्रेम प्रकट करते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रति कितना प्रेम प्रकट कर सकते हैं सर्वोच्च तरीके से, उसका प्रकट्य उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो रासलीला है। सो इट इज़ अ मीन्स, इट्स अ प्रोसेस और मीन्स बाय विच कृष्णा एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज डिवोटीज, अपने भक्तों के लिए वो उस मार्ग से प्रेम मुक्त करते हैं। और रास भक्त नहीं करते हैं, रास कृष्ण करते हैं। भक्त केवल प्रयास कर सकते हैं, रास केवल कृष्ण करते हैं। जब भक्त, एक स्थिति होती है कि जीव जो है ना वो भोग लेते रहता है दुनिया में, ये चाहिए वो चाहिए, कपड़े चाहिए, पत्नी चाहिए, बीवी चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, अधिकार चाहिए, पावर चाहिए, साम्राज्य चाहिए, वो भोगी व्यक्ति हो गया। फिर उसके बाद जो त्यागी बन जाता है कि भाई भोग मिल ही नहीं रहा है, संतुष्टि हो ही नहीं रही है, तो एक समय आता है कि भाई इतना कोशिश किया लेकिन ठोकरे ही खाई, फिर त्याग प्रवृत्ति आ जाती है। फिर त्याग के बाद मोक्ष मुद्दा जीना नहीं मुझे यहाँ पर, अभी मैं समझ गया कि दुनिया में कोई खुशी नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, फिर वो ज्ञान मार्ग में लग जाता है। कुछ लोग लग जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने में, ऐसे हिमालय में बहुत मिलेंगे आपको, ऐसा ऐसा सिद्धि प्राप्त करते हैं कि एक लोहे की सली है ऐसे लंबी, जो हमारे बिल्डिंग में काम आती है ना लोहे की स्टील, एक एक गॉज पीस रखते हैं कॉटन के साथ, और आई के ऊपर वो लेकर दीवार को लगाते हैं। समझ में आपको आया? आँख के बल पर, खुले आँख के बल पर दीवार को लगाते हैं और आगे जाकर वो उसको बेंड करते हैं केवल आँख के बल पर। तो ऐसा एक योगी हमारे गुरुदेव को मिला, वो भी हिमालय के पास, हिमालय के नीचे हरिद्वार के पास, और रोड पे ये चमत्कार कर रहा था। वो आँखों से कॉटन रखकर लोहे की सली को उसने बेंड किया लोगों के सामने दीवार के सहारे, और लोगों ने उनको धड़ाधड़ पैसे दिए, बहुत सारे पैसे दिए। तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतना बड़ा चमत्कार कर रहे तो उधर पैसे क्यों इकट्ठा कर रहा है योगी? तो क्या बोलता है पता है आपको? तो मैंने बहुत तप किया और बहुत सिद्धि प्राप्त की, अभी मुझे विवाह करने की इच्छा है, इसलिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ टू गेट मैरिड। तो जो सिद्धि मैंने प्राप्त की है उसका उपयोग करके मैं लोगों से धन इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी मैं शादी करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? सिद्धियाँ प्राप्त करने के बाद भी भोग लेने की इच्छा समाप्त नहीं होती है, फिर नीचे आकर वही करते हैं जो हम लोग अभी ऑलरेडी IT और MBBS करके कर रहे हैं, वो सिद्धि के रूप में कर रहे हैं। तो कुछ लोग सिद्धि करने जाते हैं हिमालय में, हवा में उड़ते हैं, 700-800 साल जीते हैं। मैंने बताया ना आपको वो प्रकाश दास जिसको दीक्षा दिया स्वामी हरिदास ने, वो पहले से ही 800 साल पुराने थे, यहाँ पर आके दीक्षा लिया फिर हिमालय में गए, अभी वो कहते हैं अभी भी वो जी रहे हैं, क्योंकि स्वामी हरिदास जी 400 साल पहले थे दुनिया में, वो तो योगी है ना, वो उसका जीवन बहुत लंबा है, अभी भी वो कहते हैं हिमालय में है वो प्रकाश दास। तो भुक्ति हो गई, मुक्ति हो गई और सिद्धि हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? सब लोग अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, मुझे भुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए। तो उसके आदमी योगी बन जाता है, उसके बाद भगवान से जुड़ना चाहता है, मुझे परमात्मा से मिलना है। वो फिर आगे परमात्मा के पास जुड़ने के बाद क्या करता है? परमात्मा में रममाण हो जाता है, यानी परमात्मा में आनंद मिलने लगता है उसको, लेकिन वो खुद ले रहा है परमात्मा का आनंद, अभी भोग छोड़ दिया उसने, भाई परमात्मा में रमण कर रहा है वो। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है हमारे आपके जीवन में कि भगवान आप में आनंद लेने लगते हैं, तब तक हम उनसे आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, भले वो दिव्य आनंद है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, बट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ द हैप्पीनेस फ्रॉम द लॉर्ड फॉर अस ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। लेकिन जब हमारी भक्ति संपृक्त हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है, तो भगवान आप में हमारे में आनंद लेना आरंभ करते हैं, आपको हमको यूज़ करना आरंभ करते हैं, उनकी सेवा में यूज़ करते हैं, उनके प्रचार में उनकी सेवा में लगा लेते हैं और हमारे आप में आनंद लेते हैं भगवान। तो सर्वोच्च कोटि का आनंद जब भगवान हम में लेते हैं तो वो रासलीला है। रासलीला इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णास प्लेजर इन यू ऑन द हाइएस्ट प्लेटफॉर्म। एंड जब वो खुद आनंद लेते हैं तो हमको भी परमोच्च आनंद प्राप्त होता है। इसलिए रासलीला कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई टीका करने की बात नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसको उल्टा सीधा उसके बारे में मत व्यक्त करने की बात नहीं है, वो हमारा विषय ही नहीं है एक्चुअली। और रास की एक और विशेषता है, भगवान रास में अपने रास के योग्य जो भक्त हैं यानी गोपी, उनकी सेवा करते हैं भगवान, स्वयं अनंत रूप धारण करके किसी को जल पिला रहे हैं, किसी का पैर दबा रहे हैं, किसी की क्या सेवा करे, इसको हवा दे रहे हैं, सारा वर्णन भागवत में दिया है। तो हमको लगता है कि ये तो जवान लड़के लड़कियाँ एंजॉय कर रहे हैं बीच रात में, वो भी पति पत्नी भी नहीं एक दूसरे के। तो ये समझने के लिए हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। जब हृदय पवित्र होगा, स्वयं काम वासना से मुक्त होगा, तो ये लीला हम समझ पाएंगे। और अगर बिना ये किए हुए दशम स्कंद पढ़ने लगेंगे तो हमारी अगर इतनी काम वासना है तो इतनी भड़क जाएगी, वो ज्वाला हो जाएगी उसकी। जैसे कृष्ण को देखकर पांडवों के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, जब दूत बनकर गए थे ना, वो राज क्या कहते हैं उसको, शांति दूत बनकर गए थे ना, पांडवों के प्रति प्रस्ताव लेके गए थे, भाई चलो भाई मत दो आधा राज्य, 5 गांव दे दो। तो वो दूत बनकर गए थे एज अ मैसेंजर ऑफ पीस। तब वो जब गए थे तो उनको देखकर भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, पंच पांडव, विदुर, इनका प्रेम उतना ऐसा उमड़ गया उनका कृष्ण के प्रति। और वही कृष्ण है वो जिनके प्रति इनके मन में प्रेम आ रहा है। दुर्योधन, शकुनी, कंस के इन सबके मन में, दुर्योधन शकुनी आदि कौरवों के मन में ऐसा द्वेष उत्पन्न हुआ, ऐसा भड़क उठा। तो भगवान कैसे हैं? भगवान एब्सोल्यूट है। आपके मन में भक्ति है तो उनको देखकर आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपके मन में द्वेष है आपका द्वेष भड़केगा, आपके मन में काम वासना है काम वासना भड़केगी उनको देखकर। भगवान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। तो बिना शुद्ध हुए अगर हम रास का वर्णन सुनते हैं तो हमारे अंदर दबी हुई काम वासना भड़क जाती है पूरी। इसलिए भगवान ने अपने सुखदेव जी ने रास लीला का वर्णन जो है वो दशम स्कंद में किया है। तो पूरे 9 स्कंद भागवत के पढ़ेंगे, हृदय पवित्र होगा, शुद्ध होगा, साधना करेंगे, उसको श्रद्धा से पढ़ेंगे, सुनेंगे, शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे, तो राम का चरित्र फिर 9वें स्कंद में सुनेंगे, राम की मर्यादाओं का पालन करेंगे अपने जीवन में, तब जाकर कृष्ण की बाल लीला शुरू होती है। उसके बाद कुमार लीला शुरू होती है, पवन लीला शुरू होती है, उसके बाद में ये रास लीला का वर्णन जो भागवत का हृदय है, रास पंचाध्यायी। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, वो भी किसी जानकार साक्षात्कारी संत के सान्निध्य में बैठकर सुनेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये तो नहीं पढ़ना ही अच्छा है, वो कहते ना लेने के देने पड़ जाएंगे आपको, अगर इमैच्योर अवस्था में फिर रास को समझने का प्रयास करेंगे तो। लेकिन अगर हृदय शुद्ध है हमारा तो ये काम वर्धिनी लीला नहीं है, ये काम मर्दिनी लीला है, वो आपके काम वासना को नष्ट कर सकती है अगर आप उसको उस भावना से सुनेंगे तो। बहुत साइड साथ है, उसी को सुनेंगे अशुद्ध अवस्था में तो अशुद्धि बढ़ जाएगी आपके अंदर की, और शुद्ध अवस्था में प्रामाणिकता में सच्चे संत के साथ बैठकर सुनेंगे तो अशुद्धियाँ सब समाप्त हो जाएंगी और आप परम पवित्र हो जाएंगे और सब रहस्य को समझ पाएंगे। इसलिए ये जो विषय है उसके लिए सूचना ये होती है संतों की कि आम जनता में इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तत्व की चर्चा कर सकते हैं, लीला की चर्चा नहीं कर सकते। एक बात जरूर कर सकते हैं चर्चा, कि जब कृष्ण ने अनंत रूप धारण करके एक एक गोपी के साथ एक कृष्ण के रूप में नृत्य किया तो सब गोपियों को अहंकार हो गया कि देखो मैं कितनी स्पेशल हूँ। तो आप बोलेंगे आपको दिखा नहीं क्या उसके साथ भी है, जैसे मैं बैठा हूँ तो सबको देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बैठे यहाँ पर, लेकिन गोपियाँ रास में भगवान की सेवा में बहुत मग्न थी, इतनी मग्न थी कि उनको ये पता ही नहीं चला कि ऐसे बहुत सारे कृष्ण हैं जो अनेक रूपों में हरेक गोपी के साथ में हैं, उनको लगे मेरे ही साथ में, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था उनको, केवल कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। तो उनको लगा कि मैं तो कुछ स्पेशल हूँ, सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, आई मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल, आई मस्ट बी वेरी स्पेशल। और ये सभी गोपियों के मन में यही विचार आया कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, सबको छोड़कर कृष्ण इतने बड़े रासमंडल में मेरे अकेले के साथ नृत्य कर रहे हैं। जब ये अहंकार निर्माण हुआ, भले आध्यात्मिक अहंकार है वो कि कृष्ण मेरे हैं और आई एम स्पेशल फॉर हिम, तो भगवान अंतर्धान हो गया रास लीला में से, क्योंकि तो भगवान को किसी भी भक्त के हृदय में अहंकार अच्छा नहीं लगता है, अहंकार आते हैं वो दूर चले जाते हैं। आज भी दूर क्यों हैं? क्योंकि अभी भी अहंकार है, तो भगवान दूर थोड़ी है। अहंकार मतलब मैं, आई एम, आई मी एंड माइन, वो जब तक है तब तक भगवान दूर है। जब ये आई मी एंड माइन नष्ट हो जाता है तो भगवान हृदय में आपको दर्शन देते हैं, पहले स्वप्न में देते हैं, फिर ध्यान में देते हैं, फिर प्रत्यक्ष देते हैं, फिर निरंतर दर्शन देते हैं। ये 4 दर्शन का लेवल है उनका, पहले स्वप्न में देते हैं कुछ समय के लिए, फिर ध्यान में देते हैं कुछ समय के लिए, फिर प्रकट होते हैं ध्रुव महाराज जैसे कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद में आपको हर जगह पर हर कण में हर दिशा में भगवान दिखाई पड़ते हैं, जब पूर्णता से अहंकार दूर हो जाता है। तो रासलीला का एक मैसेज जरूर है, जहाँ जहाँ जब जब भगवान ने रास किया और जब जब गोपियों को घर हुआ तब तब भगवान अंतर्धान हो गए। वो बता रहे हैं हमको कि हमारे बीच में एक ही फासला है, वो ही अहंकार का है, और वो छोड़ने के लिए हम ब्रज में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ब्रज में वो प्योर डिवोटीज जो है ना, वो उनके पास अहंकार नहीं होता है। कितनी भी भक्ति होने पर, भक्ति का लक्षण क्या है कि जितनी भक्ति करेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी, उतना वो व्यक्ति अपने आप को और तुच्छ और तुच्छ और तुच्छ समझने लगेगा। उद्धव जी इतने बड़े भक्त थे लेकिन ब्रज में आए और जब गोपियों को देखा तो लगा कि मेरे तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। इनको लगता है गोपियों को कि मैं कितना भगवान के निकट हूँ, खाता पीता उठता बैठता शिकार खेलता मंत्रणा करता सभा में, मैं हर जगह उनके साथ में हूँ, तो मुझे भाग्यवान समझते हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं कितना दूर हूँ भगवान से। ये भगवान के शरीर से इतने दूर है लेकिन भगवान के कितने निकट है ये भाव से। इसलिए वो निकट का स्थान छोड़कर उद्धव जी ने तपस्या किया यहाँ पर, क्या करने के लिए, तृण का पत्ता बनने के लिए, टॉप मोस्ट पोजिशन थी उनकी, वो छोड़कर एक घास का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया उसने, और वो तपस्या करके घास का पत्ते का स्वरूप प्राप्त किया, और उसी पत्ते के रूप में आज भी रह रहे वृंदावन में। इसको कहते हैं अहंकार त्याग करना, बड़े पोजिशन में से एकदम अस्तित्वहीन बन जाना। ब्रह्मा जी पत्थर बने, विष्णु जी पत्थर बने, शंकर जी पत्थर बने, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, सेवा प्राप्त करने के लिए, चरणों की रज प्राप्त करने के लिए। तो आप जाएंगे दर्शन करने के लिए इसी भाव से जाना, तो कृष्ण मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ब्रज में तो वो निवास करते हैं, सदैव उपस्थित रहते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता नहीं कि बहुत ठंड का मौसम है, अच्छी जलेबी मिल रही है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। कृष्ण का सान्निध्य मिल रहा है हमको यहाँ पर, हर वस्तु में, प्रसाद में, जल में, हवा में, कथा में, स्थान में, पेड़ में, हर चीज़ में कृष्ण का सान्निध्य का अनुभव होता है, और होना चाहिए, तो ही आपकी ब्रज की यात्रा सफल है। अगर आपको ये पता चला कि ये धोती वहाँ दुकान में अच्छी मिलती है, वो मिठाई वो दुकान में अच्छी मिलती है, और वो जलेबी वो कोने में अच्छी मिलती है, और बाकी बिहारी के पास बड़ी टिक्की और लस्सी बड़ी बढ़िया मिलती है, ये जानकारी होना यानी ब्रज की यात्रा होना नहीं है। ब्रज में कृष्ण की अनुभूति कहाँ हुई, ये ब्रज की यात्रा की सफलता है। अभी हम लोग अभी लास्ट इवनिंग में है हमारी यात्रा, तो क्या आपको सोचना है मन में, वॉट यू हैव टू इवेल्युएट, कितना अनुभव हुआ कृष्ण के होने का, किधर हुआ सबसे अधिक, किधर हुआ, कहाँ मन भटका हुआ था, कौन सी कथा में मन डिस्टर्ब हो गया था, कौन सी कथा में एकदम लग गया था, ये सारे आपका टेक होम है, आपका ये शेष है, आपके बैलेंस आपके अकाउंट में ये है, वो आपको देखना है, अभी सोचना है उसके बारे में, क्योंकि आपकी वास्तविक यात्रा आज से शुरू होती है। जो आपने लिया है उसको परवरिश कल्टिवेट करना, जब जाएंगे अपने अपने देश में शहर में, तो कितना आपको याद आ रहा है, वो कितना छुआ है आपको, और कितना छुआ हुआ याद आ रहा है, उसमें आपकी यात्रा की सफलता है। और अगली यात्रा तक आपको ये मेंटेन रखना है, कल्टीवेशन, ट्रेन से आपको शुरू करना है, रिवीजन लिखा होगा तो रिवाइज करेंगे, फिर घर जाके लोगों को बताएंगे जो लोग नहीं आए आपके साथ में। और आप भी जब भी भोजन बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई कपड़ा पहन रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, कार में जा रहे हैं, तो आपको याद करते रहेंगे, हाँ ब्रज की याद आ रही है, वही सच्चा ब्रजवास है जो मन से होता है। शरीर से अभी कर रहे हैं आप, मन से भी कर रहे हैं, लेकिन मन में कितना ग्रहण किया है उसके ऊपर आपके ब्रज की यात्रा की सफलता है। तो हम भी गए, हाँ गोवर्धन भी गए थे, हाँ वृंदावन भी गए थे, हाँ बांके बिहार भी जाके आए, अच्छा बरसाने गए थे, हाँ उधर भी जाके आए। जाके आने से कुछ नहीं होता है, तो गधा बिल्ली और ऊंट भी जाता है, लेकिन हमारा जाना जो है वो आत्मस्तर पर होना चाहिए, कृष्ण को ग्रहण करने के लिए, और उसके ऊपर कृष्ण के ऊपर भी राधा कृष्ण गोपियों का जो भक्ति भाव है वो भाव ग्रहण करना ही ब्रज यात्रा है। यहाँ का भाव जो है ब्रज भाव को ग्रहण करना, सेवक भाव, नम्रता, सहनशीलता, और सदैव तत्पर रहना दूसरों की सेवा करने के लिए, ये ब्रज की देन है, ये ब्रज यात्रा की सफलता है। और उसके बाद फिर तड़पना, हैंकरिंग, मतलब ब्रज की याद में लगना, अरे मैं नेक्स्ट कब जाऊंगा वहां पर, आई हैव टू विजिट अगेन. ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा बोलते ना, आपका पूरी हो गया, हाँ मेरा पूरी हो गया, आपका द्वारका हो गया, हाँ द्वारका भी हमारा हो गया. वो हो गया कि यात्रा नहीं करनी हमको. आपको लगेगा ये हरे कृष्ण वाले बार बार क्यों जाते हैं वृंदावन में, वही मंदिर बार बार देखते हैं. इस नॉट नेसेसरी, एक बार करना जीवन में काफ़ी है. मत्था टेका हो गया, हमारा चारधाम हो गया, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं. हम लोग यहाँ 50 बार वृंदावन बार बार आते हैं, उसी मंदिर में बार बार जाके बैठते हैं, वही प्रार्थना बार बार करते हैं, क्योंकि हर बार अधिक गहराई में उसी स्थानों का हमको अनुभूति होती है. हर बार कुछ नई चीज़ दिखाई पड़ती है, कुछ नई सुनती बात है, और गहराई में उसकी उसी चीज़ का प्राप्ति होती रहती है. आप रोज़ खाना खाते हो ना, दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई, फिर बोलते हो क्या क्या रोज़ खाना खाना है, महीने में एक बार खाएंगे, अभी जीवन भर खाना खाया, मंथली एक बार खाएंगे, अभी क्या है, रोज़ क्यों सोना है, अभी अगले महीने सोएंगे, बहुत सोए जीवन में, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ऐसा. कुछ कुछ चीज़ें रोज़ करनी पड़ती है. वैसे धाम यात्रा भी नित्य नियम से करनी चाहिए, प्रेम से करनी चाहिए. जैसे जैसे किसी लड़की को अपने मायके जाने में कभी बोर होता है क्या? वही पुराना घर, बचपन का वही घिसा पीटा, 25 रहे वहाँ पर, फिर भी हमेशा वहाँ जाने के लिए तड़पता है दिल. शादी को 25 भी हो गए तो भी माई मैया के पास जाने के लिए दिल तड़पता है. क्यों? क्योंकि प्रेम है ना हमारा, इसलिए. तो वैसे हमको भगवान से, उनके धाम से प्रेम होना चाहिए, और वहाँ जाने के लिए बार बार दिल तड़पना चाहिए, देन योर यात्रा इज सक्सेसफुल. अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यहाँ पर बार बार आना चाहिए, नेक्स्ट यात्रा कभी है वृंदावन की, दैट इज अ इंडिकेशन टू यू हैव डन यात्रा सक्सेसफुली. अपना आप ही आप इवेल्युएट करो, कोई आपके परेशान रहने को आने वाला नहीं है, आपको खुद को ही जज करना है. क्या सोन पापड़ी अच्छी लगी कि भगवान की लीला अच्छी लगी, ये आपको ही तय करना है. हाँ, राधा रमन का, राधा वल्लभ जी का, दामोदर जी का प्रसाद जरूर याद करना, क्योंकि तो साक्षात दामोदर जी हैं, वो साक्षात राधा रमन जी हैं. अभी देखो कुलिया प्रसाद आया क्या? हाँ, वो जरा देखा, एक एक लेके आओ जरा, मैं दिखाता हूँ. वो कुलिया प्रसाद है ना, वो बहुत फेमस है. उसके अंदर जो क्या कहते हैं उसको, रबड़ी कह सकते हैं, क्योंकि वो खीर भी कहना, खीर तो हमेशा चावल की बनती है, बिना चावल की खीर नहीं बनती. दूध को ना ऐसा चला चला के गाढ़ा हो जाता है, और वो फिर वो इतना मड़के में भर देते हैं, और फिर वो बैठ जाता है शांति से, फिर वो देते हैं. अरे हमने वो घर में कई बार प्रयास किया है बनाने का. हाँ, जय हो राधा रमन लाल की जय, लेकिन वैसा नहीं बनता है. और यहाँ पर भी बांकी बिहारी के बाहर और ये मंदिर के बाहर ये सब मिलता है, लेकिन राधा रमन जी का जो कुलिया प्रसाद है कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं. इसका रहस्य ये है कि ये साधारण कुलिया प्रसाद नहीं है, ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं. ये राधा रमन जी के गोस्वामी में हमको बताया था कि बाहर जो है ना ये सैफरन कलर का मटका है, वो चैतन्य महाप्रभु का वस्त्र है. यानी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तो ऐसा वस्त्र पहने हैं इस कलर का, और अंदर क्या है, सफ़ेद रंग की खीर है. यानी जो भी है वो राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए थे तब वो चैतन्य महाप्रभु बने थे, है ना. कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर जब जन्म लिए तो वो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बने. ये साक्षात चैतन्य महाप्रभु है, अंदर गोरा रंग है और बाहर सैफरन है. तो जब इसको ग्रहण करोगे ना तो उस भाव से ग्रहण करना. इसके पीछे भी एक रहस्य है, वो सारी उंगलियां जो है ना वो अपना अपना काम करती है, लेकिन इस उंगली को निर्देशिका कहते हैं उसको ना, उसको बहुत अशुभ माना है. ये कोई पूजा में काम नहीं होता, इससे इससे होता है, इससे होता है, सब इससे ज़्यादा वो काम होता है. तो वो उंगली राधा रमन के पास गई, बोली हमारे लिए कुछ सेवा दो. कुछ सेवा ही नहीं है, किधर एंट्री नहीं हमको. तो उन्हें कहा हमारा कुलिया आपके उंगली से खाया जाएगा, तो इसको खाएंगे तो ये उंगली से खाना, समाप्त हो जाएगा तो ये उंगली से खाना लास्ट में, ये उसकी विशेषता है. हाँ, तभी देखिए आप इसका स्वाद को देखकर खा सकते हैं, या तो आप इसी को खा सकते हैं महाप्रभु जी का चिंतन करते हुए, फर्क है ना उसके अंदर. यही ब्रज भक्ति का भाव है, भाव इसी को कहते हैं. करते सब कुछ है, लोग सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन भक्त लोग है ना यही शक कृष्णा स्वादिलो इस भाव से खाते कि ये जो मैं खा रहा हूँ ना ये कृष्ण ने खाया हुआ है, उनका अदरामृत इसमें मिक्स हो गया है और मैं वो खा रहा हूँ। ये नहीं कि मुझे जलेबी पसंद है, मुझे बर्फी पसंद है, मुझे वो आलू की सब्जी पसंद है, ऐसे नहीं खा रहे हैं। जो भी परोसा हुआ है वो कृष्ण को भोग लगाकर उनके अधरामृत को मिक्स करके हमको मिला है प्रसाद उनका, तो वो भाव से खा रहे हैं तो उसका लाभ अलग है, वही चावल है। तो इसी को हमको सीखना है, दैट इज अ डिफरेंस। नहीं तो हर आदमी सोता है, हर आदमी खाता है, हर आदमी पहनता है, हर आदमी धन कमाता है, हर आदमी काम करता है, व्हाट इज द डिफरेंस। भक्तों के जीवन में भी कार्य होते हैं, भक्त भी खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, सब कुछ करते हैं, अंतर क्या है? भाव का अंतर है, किस लिए करते हैं। गोपियाँ भी बहुत सज सजती हैं, गोपियाँ अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट श्रृंगार करती हैं, क्यों करती है? कृष्ण को अच्छा लगे। और हम क्यों करते हैं? बार बार आईने में देखने के लिए कि मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन यहाँ के लोग सज सजते हैं कृष्ण को अच्छा लगे, इसलिए अपने आप को ऐसा बिखरा हुआ रखते नहीं है, क्योंकि जब दर्शन करने जाएंगे तो कृष्ण हमको देख रहे हैं, तो हम ऐसे बिखरे हुए हैं, बाल बिखरे हुए, कपड़े खराब है, तो कृष्ण को अच्छा लगे इसलिए वो अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं, खुद का गौरव करने के लिए नहीं। भाव में अंतर है। तो ये भाव को ग्रहण करना जो है यही कृष्ण भक्ति है और यही ब्रज यात्रा का सार है। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि मत्था टेक यात्रा कभी मत करना, कृष्ण को ग्रहण करने की यात्रा करना। कभी जगन्नाथपुर जाएंगे तो वहाँ पर जगन्नाथ का भाव ग्रहण करने के लिए यात्रा करेंगे, कभी द्वारका जाएंगे तो वहाँ का भाव ग्रहण करने के लिए यात्रा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे तो अलग भाव में यात्रा आएंगे। ये भाव ग्रहण करना, ये धाम को ग्रहण करना है, तब आपकी धाम यात्रा सफल है। और ब्रज में अनंत स्थान है, अभी मुझे कितनी साम याद आ रहे हैं, क्या करें। यहाँ पर दाबानल कुंड है जहाँ भगवान ने अग्नि पिया था, कालिया को दमन करने के बाद बहुत देर हो चुकी थी, लेट हो चुका था वापस जाने के लिए, तो नंद बाबा सब लोग यहीं रुक गए, तो वन में आग लग गई, कंस ने आग के रूप में राक्षस भेजा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखो मैं क्या करता हूँ, मुंह खोला और आग को पी लिया। दावानल कुंड, दावानल यानी जंगल की अग्नि को भगवान ने पिया और सबको संतुष्ट कर दिया। दूसरी बार भांडीर वन में अग्नि लगी वैसे ही, इस बार जब अग्नि पी ना सबने कंप्लेंट किया, ये ना मट्टी भी खाता है, माखन भी चोरी करता है, अभी आग भी पीता है। तो अगली बार जब आग लगी तो उन्होंने कहा आग बंद करो, तुमने आग बंद करी, आग पी लिया और बोला अभी आग खोलो, किसी को पता नहीं चला कि आग गई किधर। तो दावानल कुंड है वो, उसके आगे अक्रूर घाट है जहाँ पर अक्रूर जी आए वहाँ से अंदर, और वहाँ से वापस कृष्ण बलराम को लेकर गए। बहुत अच्छा स्थान है वो, बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत अच्छी लीला है वहाँ पर। उसके आगे जाएंगे यज्ञस्थली है, वहाँ पर वो कृष्ण बलराम भिक्षा मांगने गए थे, मतलब कृष्ण बलराम नहीं गए, ग्वाल बाल गए थे, और ब्राह्मणों ने धुतकार दिया उनको, और ब्राह्मणों की पत्नी ने उनको भोजन खिलाया। यज्ञस्थली कहते हैं उसको, वो स्थान वहाँ पहाड़ पर है, एकदम एकांत स्थान है। उधर आगे जाके एक स्थान है, ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में मैं, कभी भगवान की इच्छा रही आप भी प्रार्थना करो कि कुछ कुछ स्थानों को स्पर्श किया हमने, अनंत स्थानों का दर्शन करना बाकी है अभी। एक ऐसा स्थान है, इसका नाम है तुलसी आश्रम, और मैंने कहा कथा कहाँ कहाँ बताई थी, तो मुझे लोगों पूछा कि प्रभु जी वो यात्रा में लेके जाएंगे आप, मैंने कहा कोशिश करूँगा लेकिन बहुत दूर है वो स्थान यहाँ से। वो तुलसी आश्रम में तुलसीदास जी आए थे वृंदावन में, बहुत सुना था वृंदावन के बारे में, तो तुलसीदास आए थे तो कहते थे ये बालक जो है ना उसके मोह से आए थे, और उन्होंने बहुत सारा सुना था कि बालक यहाँ बहुत लीला करता है, वो गिरिराज को उठाया ऐसे वैसे बहुत सुना। लेकिन बाद में लोग कहने लगे कि ये बालक भगवान है, तो तुलसी तो कृष्ण राम के भक्त थे, उनको लगा लीला सब ठीक है अच्छी लगी मुझे, लेकिन भगवान है ये मानना मुझे मुश्किल है। तो थोड़ा सा बहस हो गई उधर, लीला अच्छी लगी लेकिन वो भगवान मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनके इष्ट राम थे। तो उन्होंने आखिर में कहा अगर ये बालक मुझे राम के रूप में दर्शन देता है तो मैं मानूंगा कि मेरे भगवान है। तो तुलसी इतने पवित्र भक्त थे राम जी के, इतने पसंदीदा भक्त थे कि कृष्ण ने उस जगह पर तुलसीदास को राम के रूप में दर्शन दिया है, और आज भी उस मंदिर में प्रभु राम का दर्शन है, लेकिन है वो कृष्ण बलराम है स्वयं, वो राम के रूप में धनुष बाण लिए खड़े हैं तुलसी को प्रसन्न करने के लिए। तो वो तुलसी आश्रम है, उनके जो पुरोहित थे वो बड़े सारे सातों देवालय के पुरोहित थे वो, सप्त देवालय के जो हमारे गौड़िया के सब संप्रदाय हैं उनके ऑथोराइज पुरोहित थे वो, प्राण गोपालाचार्य, और उन्होंने हमारे गुरुजी के माताजी का अस्थि विसर्जन कार्य भी किया था, और हमारे गुरुजी के बड़े अच्छे मित्र थे वो, उनका आश्रम है वो तुलसी आश्रम, उसके आगे कात्यायनी पीठ है जहाँ पर अभी हम लोग इस यहाँ निवास कर रहे हैं ना 15 दिन से, 8 तारीख को कार्तिक समाप्त हो गया दामोदर मास, और 9 तारीख से कार्तिक का वो पक्ष शुरू हो गया, तो अभी गोपियाँ कात्यायनी व्रत कर रही हैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, दिस इज द पीरियड ऑफ कात्यायनी व्रत, 1 महीना, अभी अमावस्या आएगी फिर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा आएगी, उस दिन कात्यायनी व्रत पूरा हो जाता है, और उस दिन भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, वस्त्र हरण लीला किया, चिरहरण लीला। तो आज ये का पीरियड चल रहा है ना कि ब्रज में कात्यायनी मंदिर में कात्यायनी का व्रत का बहुत बड़ा महोत्सव चलता है, और कात्यायनी का मतलब क्या है, जब सती का देहांत हो गया दक्ष के यज्ञ में तो शिवजी ने उसको लेकर तांडव किया, तो उनके जो बाल थे वो उस जगह गिरे जहाँ पर अभी कात्यायनी का मंदिर है, और शरीर के 52 हिस्से हुए, और 52 हिस्से भारत भर में 52 जगह पड़े, तो भारत में 52 शक्तिपीठ है, उसमें से एक पीठ कात्यायनी का है, बहुत जागृत पीठ है वो, और वहाँ पर आज भी यहाँ की गोपियाँ जो हैं वहाँ के व्रत करती हैं, वो कात्यायनी पीठ है। फिर टेकरी रानी का मंदिर है, वो भी रानी थी बाहर की, यहाँ के भक्त बनी। लाला बाबू का मंदिर है, राधा कृष्णचंद्र, क्योंकि उनका नाम भी कृष्णचंद्र था, उन्होंने राधा कृष्णचंद्र का मंदिर स्थापन किया, बड़े धनी राजा थे वो, लेकिन यहाँ पर आकर फकीर विरक्त बने, और मांग मांग कर अपने पहले वाला जिंदगी में जो दुश्मन थे उनसे भी जाकर धन मांग कर उन्होंने मंदिर बनाया। क्या दिखाया कि भगवान के भक्ति के लिए दुश्मन के सामने भी मत्था टेकना कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान ने परीक्षा ली उनसे, जो पिछले जिंदगी के जो दुश्मन थे उनके पास जाकर भी धन मांगा और वो मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर मंदिर है। और कैसे विरक्ति में यहाँ पर लोग आकर अपना सब कुछ त्याग करके भजन करते हैं, इसका प्रतीक है वो। अभी मैं आखिरी एक कहानी बताऊंगा और मेरा ये खिंचता हुआ प्रवचन समाप्त कर दूंगा। तो बीच में मैंने कहा था ना कि भगवान ने यहाँ पर कई लोगों को अद्भुत तरीके से दर्शन दिया है, उनके लिए प्रकट हो गए वो। तो एक राजकुमार था, राजा का पुत्र, एक ज़माने में भारत में ना संस्थानिक हुआ करते थे, प्रोविंसेस, वो राजा ही थे, अपने अपने 50 राजा थे भारत में, अपने अपने इलाके में राजा थे वो। तो उनका ये पुत्र था, तो परिवार राजा का एक बार ब्रज की यात्रा में आया था, तो ये उनका पुत्र था, वो इतना घनश्याम उसका नाम था, इतना मोहित हो गया कि अपने राजा को पिताजी को बोला कि मैं नहीं आऊँगा घर पर अभी। तो उनको लगा ठीक है कुछ दिन रहने दो, थोड़ा दिल भर जाएगा तो आ जाएगा घर पर, छोड़ के गए उसको। दोबारा आए, तीसरी बार आए, चौथी बार आए, पांचवी बार आए, कई बार आए, तो ये लड़का फिक्स्ड है कि मुझे अभी तब लौटना नहीं है, तब तक फकीर बन गया था पूरा, बाबा बन गया था, तो छोड़ दिया फिर उसको। एक ज़माने में वो राजा बनने का वो उसका अधिकार था राजपुत्र के रूप में, लेकिन यहाँ पर इतना विरक्त हो गया कि भगवान का भक्त बन गया। तो वो ना घनश्याम जी जमुना जी के रेत पर ऐसे लिखते थे हाथ से, राधा राधा राधा, और उसको मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे, फिर लिखते थे, फिर मिटाते थे, ऐसे एक बार मिटाते समय हाथ को कुछ शार्प चीज़ लगी उनको, ऐसे कुछ लगा नोकदार नो पॉइंटेड चीज़, तो देखा तो कुछ ऐसे चीज़, क्योंकि बहुत सारी रेती उस समय में गई थी ना, तो नीचे वाले कुछ चीज़ ऊपर आ गए, उनको लगा होगा कुछ काटा कंकड़ होगा, तो देखा खोदते गए तो राधा कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई उसमें से, उसके अंदर कृष्ण के मूर्ति के नीचे एक नेम प्लेट भी था कार्विंग वाला, गोपी जन वल्लभ। तो मूर्ति को लेकर वो अपने घर आए, यानी कुटी पे आए, और जीवन भर उस राधा गोपी जन वल्लभ की सेवा की उसने, ऐसे ही भोजन करते थे उनको उठा के ऐसे बड़े भक्ति भाव से। और उनकी हमारी गुरुजी की मुलाकात हुई, जब गुरुजी हमारे यहाँ पर भ्रमण में थे तो घनश्याम बाबा की मुलाकात हुई, और घनश्याम बाबा का भाव देखकर गुरुजी बड़े प्रभावित हो गए। वो अनोखा सफ़र किताब में, जर्नी होम किताब में घनश्याम बाबा का बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि बहुत सारी भक्ति के विषय में गहराई की बातें घनश्याम बाबा ने महाराज को सिखाई। तो उनका मंदिर भी यहाँ पर पास में ही है। तो घनश्याम बाबा और राधा वल्लभ जी के पीछे रहते थे, एक उनके पीछे एक घर था, हम लोग उनके घर पर भी गए। उधर उधर से जब वो गुजर गए घनश्याम बाबा, तो किसी को पता चला नहीं वो मूर्ति कहाँ गई राधा वल्लभ गोपी जी ने वल्लभ की, जिसका हमारे गुरुदेव ने दर्शन किया था। तो हम लोग 2002 की यात्रा में आए थे यहाँ पर, तो गुरु जी ने मुझे कहा जाओ ढूंढो वो गोपी जी ने वल्लभ की मूर्ति कहाँ है। तो मैंने कहा कहाँ ढूंढूँ कैसे ढूंढूँ, तो गुरु जी ने कहा कि मोती झील के एरिया में जाओ और वहाँ पर इंक्वायरी करो। तो मैं ना कई घंटे ढूंढता रहा, सबको पूछता रहा, घनश्याम बाबा तो घनश्याम बाबा सब जानते हैं, हाँ घनश्याम बाबा वो उनकी मूर्ति आई डोंट नो। तो मैं वापस लौट के गया, महाराज को बताया मैं यहाँ वहाँ गया सब जगह पर, लेकिन कोई जानता नहीं है उसके बारे में। तो महाराज ने कहा इस बार जाओ दोबारा और केवल दाढ़ी वाले पुराने बुढ़े भक्तों को ही पूछो, ब्रजवासियों को। तो फिर मैं इस बार सबको पूछना बंद कर दिया, और कोई बुजुर्ग आदमी मिला तो उसको पूछता था मैं। तो दो चार बुजुर्गों को पूछने के बाद एक बुजुर्ग ने बताया वो उधर द्वारकाधीश के मंदिर में है। तो मैं गया उधर पीछे मोती झील के पास द्वारकाधीश के मंदिर में गया, वहाँ पर सिखों का मंदिर था। वो उस मंदिर में बहुत सारे सिखों सरदार को संतों की फोटो थी, उसके बीच में ये राधा गोपीचंद वल्लभ। फिर 2000 यात्रियों को मैंने जाके महाराज को खुशखबरी सुनाई कि आपके घनश्याम बाबा के गोपीचंद वल्लभ मिल गए। तो महाराज इतने खुश हो गए, पर अभी हम वहाँ पर प्रवचन करेंगे आज अपना। तो मुझे बताया आप 2000 लोगों को संकीर्तन में लेके चलो वहाँ पर, बस सबको बिठा दो मैं आता हूँ। तो मैं 2000 लोगों को लेकर कीर्तन करता करता उधर फोगला आश्रम से वो आश्रम में गया, सबको बिठाया। फिर महाराज जी आए और महाराज जी को मैंने ऐसे फूट फूट कर रोते हुए कभी देखा नहीं आज तक। वो प्रवचन में घनश्याम बाबा की यादें सुनाते हुए इतने फूट फूट कर रोए, आज भी उसका रिकॉर्डिंग है अवेलेबल है। उनका और घनश्याम बाबा का क्या आदान प्रदान हुआ और क्या उन्होंने अनुभूति की, क्या सीखा, उसके बारे में बताते बताते इतने रोए महाराज, इतने रोए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये ब्रजभूमि है, यहाँ पर ऐसे भाव के संत रहते हैं, उनके चरणों में सारे कृष्ण जो है ना उनके चरणों में रहते हैं प्रेम से, ऐसा नहीं कि वो उनको नतमस्तक कराते, लेकिन भगवान उनको चाहते हैं इतना। और वो घनश्याम बाबा ने बताया था हमारे गुरुदेव को कि अभी आप बरसाने जाओ और वहाँ पर निवास करो, वहाँ पर आपको अनुभूति होगी। तो फिर घनश्याम बाबा को छोड़कर ये चल के बरसाने गए थे और वहाँ पर 6 महीने रहे। एनीवेज ब्रजभूमि बड़ी विचित्र भूमि है और ब्रजभूमि व्यक्ति है, ब्रजभूमि इज अ पर्सन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ श्री कृष्णा, और वो आपको प्रतिसाद देती है, आपके भजन के अनुसार आपको अनुभूति देती रहेगी। और आपने अगर अच्छा अगर साधना यहाँ पर किया है दिल से तो ब्रजभूमि आपको बार बार बुलाएगी, ये भी उसका एक लक्षण है। अगर आपने सही यात्रा किया है तो ब्रजभूमि आपको बुलाएगी अगेन एंड अगेन टू शो यू न्यू प्लेसेस हर समय। तो आप प्रार्थना कीजिए कि हमारी केवल पिकनिक टूर ना हो, हमारी यात्रा हो हर समय, वहाँ आपको देखें, आपको चाहें, आपका भजन करें, आपका पूजन करें, आपके चरणों में रहे, आपको समर्पण करें हमारा जीवन, ये भावना होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।